તારીખ 3/1/1987 શ્રી સમયસર ગાથા 132 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 323.
ઉદયનો જે ક્રમ છે એ પ્રમાણે ઉદયનો ક્રમ ચાલુ જ રહે છે. જીવ સ્વરૂપમાં સાવધાન નથી એટલે આપોઆપ સહજપણે ઉદયને અનુસરે છે. એવો ઉદયનું અનુસરણ પરિણામને થઈ જાય છે અને એના બે ભેદ સુખ અને એક અસુખ એવા બે ભેદે વિકરણ બની જાય છે. હવે જે જીવને વિજ્ઞાન કરવું છે એને આ એક સામાન્ય ખ્યાલ છે કે અત્યાર સુધી નિરંતર હું બે ભાવે પ્રણામ જોઈએ છે અને જ્યાં સુધી આવું ઉદય ભાવે પરિણમવાનું ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી નવા કર્મ બંધ ચાલુ રહેશે. ઉદય ધારાવાહી ચાલુ છે એની સાથે શુભાશુભનું પરિણમન ધારાવાહી રહ્યા કરે છે. ધારાવાહીનું કર્મ બંધ થાય છે. આવી એક સામાન્ય પરિસ્થિતિને કારણે જીવને છૂટવાનો કોઈ ઉપાય નથી. ભોગવે છે ને હું બાંધતા કરે છે. જે જીવ વિજ્ઞાન કરવાના પ્રયત્નમાં આવે છે પ્રયાસમાં આવે છે એને આ અહીંથી જુદું પડવું છે. ઉદયથી ઉદયને અનુસરવું નથી, ઉદયથી જુદું પડવું છે. જો ઉદય ભાવમાં એમને રહ્યા કરે તો નવા બિંદુ થયા જ કરે. તો ઉદયનું અનુસરણ ન કરવું તો નવા બંધનમાં ન આવવું. ઉદયનું અનુસરણ ન થાય તો જીવ નવા બંધનમાં ન આવે. તો ઉદયનું અનુસરણ કેમ ન થાય કે આ જીવ ઉદયમાં ઉદયનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે છે. આ પૂર્વ કર્મનો ઉદય છે. હું એ ઉદય વાળો નથી પણ હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું. આવા ઉદય વાળો છું ત્યાં સુધી નવું બંધન ચાલુ છે. ઉદય વાળો નથી પણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું તો જુદો પડવાનો અવકાશ છે. વેદ જ્ઞાનનો સાદામાં સાદો ઉપાય વેદ જ્ઞાન કરવાનો ઈઝી પ્રેક્ટિકલ જેને કહેવાય સુધા સુધી ચાલ્યું જ આવે છે. કર્મ પણ સુધા સુધી રીતે ઉદયમાં ચાલ્યું આવે છે અને આ જે અત્યાર ત્રણ નીકળ્યો છે આ એની અનાદિથી વર્તમાન સુધીની આ સ્થિતિ છે. એક રીતિમાં અનંતકાળથી વર્તમાન સુધીનો સંસાર સંક્ષિપ્તમાં આવી ગયો. જીવનો સંસાર એ જ રીતિમાં કહીએ તો શું કે ઉદયને અનુસરી નિકરણ ઉદયભાવમાં આ અનંતકાળના સંસારમાં સંક્ષેપ છે. એક જ નહીં હવે એનાથી બધું બંધન છે અને મુક્ત થયું છે. જેને બંધનથી જેને છૂટવું છે એને એક જ ઉપાય છે કે ઉદયમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહેવું. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ભાવે રહેવું એટલે કે માત્ર જાણવું એવો એનો સ્વભાવ છે. જાણવું એવો એનો સ્વભાવ છે જાણીને સ્વરૂપ છે, એટલે ઉદય વાળો એવું માનીને જે પ્રણમી રહ્યો છે એને નિશ્ચય બદલવો પડે. ઉદય વાળો નહીં, હું માત્ર જાણવા વાળો. જાણવા વાળો હોવાથી હું જાણવા વાળો રહું, જાણવા વાળો રહું તો ઉદય ભાવમાં ના આવું તો મને બધું. અને જો જાણવા વાળો ન રહે તો સહજપણે ઉદય ભાવમાં પ્રણ મન જશે. જાણી રહ્યો છું પણ ઉદય ભાવમાં તન્મય થઈને જાણવું થઈ ગયું છે, એ પ્રકારનું જાણવું એ જાણવું નથી. ત્યાં જ્ઞાન હોવા છતાં ત્યાં જીવનો ઉદય ભાવ છે એમ કહેવાય છે. જ્ઞાન તો છે, ક્યારેક એક સમય જ્ઞાન વગરનો તો નથી, પણ છતાં જીવનો ઉદય ભાવ છે એમ કહેવાય છે. જ્ઞાન છે એમ નથી કહેવાતો. અને જ્ઞાન હોવાથી જ્ઞાન મળતું એ મારું સ્વરૂપ છે, એવું જ્ઞાનમાં રહે તો ત્યાં ઉદય ભાવથી છૂટવાનું, છૂટા થવાનું, જુદા થવાનું અને જ્ઞાન પરિણામ બન્યા છે.
મારો ઉદય ભાવ સાથે તન્મય થવાનું નથી, આ નિર્ણય કરે છે.
ઉદય ભાવ છે એ હું છું, ઉદય વાળો હું છું, એવા નિર્ણય થી કરણ મેળવ્યો છે. નિર્ણય બદલ્યો છે કે હું ઉદય વાળો નહીં, હું જ્ઞાનમય જ્ઞાતા, જ્ઞાનમય એવો હું જ્ઞાતા. ઉદય વાળો હું નહીં, ઉદયનો પણ જ્ઞાતા, સર્વનો જ્ઞાતા, સર્વનો પણ જ્ઞાતા, સર્વનો પણ જ્ઞાતા. જ્ઞાતા એટલે જ્ઞાતા ખરેખર જ્ઞાનમાં જ્ઞાતા પણ છે. જ્ઞાનમાં શું છે? જ્ઞાતા પણ તો છે. વાસ્તવિકતા એ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જોવાનું આવે તો જ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, તે જ્ઞાતા પણ તે જ્ઞાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ. જ્ઞાનમાં શું રહ્યું છે? જ્ઞાતા પણ. જ્ઞાનમાં જ્ઞાતા પણ છે, માત્ર જાણવા પણ છે, એ વાત મારા નિર્ણયમાં મારી સમજમાં કદી આવી નથી. અને તેથી જ્ઞાનમય પણ હોવા છતાં જ્ઞાનમય પણ છું એવા ભાવો હું પ્રમાણમાં નથી. જ્ઞાનમયપણે હું હોવા છતાં જ્ઞાનમયપણે છું એવા ભાવ હું કરું. આ બહુ મોટી નિર્જ્ઞાન કરનાર જે પૂર્વકર્મ અનુસાર સુભાષિત ભાવને ઉદય પ્રસંગ છે, સર્વથી એ વાળોને સર્વથી ભિન્ન, સર્વથી જુદો હું જ્ઞાનમયપણે હોવાથી મારી ભૂમિકા છે. મારી ભૂમિકા શું કરવા છે કે હું ઉદય વાળો નથી પણ જ્ઞાન નય પણ છું, તેથી મારી ભૂમિકા છે. નિર્ગુરાધિકારમાં આ શૈલી અપનાવી છે. ચાર દિવસ સમયસરમાં નિર્ગુરાધિકારમાં કે સંયોગ દ્રષ્ટિ જ્ઞાનમય પણ જ્ઞાનમય પણ હોવાને લીધે આવો આવી એક શૈલી વાપરી છે. એ જ્ઞાનમય પણ હોવાને લીધે એનો અર્થ કે પોતે એમ અવલંબન લે છે કે હું તો જ્ઞાનમય પણ છું ને, હવે હોવાથી મારે શું છે? ઉદય સાથે ઉદય એક જુદી ચીજ છે જે પૂર્વમાં પૂર્વથી અજ્ઞાનપણે થયેલી ભૂલથી ભૂલનું ફળ અત્યારે આવે છે. અજ્ઞાનપણે પૂર્વે ભૂલ કરી છે એમ ફળ જે કાંઈ છે તે આ ઉદય છે, બીજું કાંઈ ઉદયમાં નથી. ઉદય એટલા પણ એ ભૂલ તો એ પ્રકારની હતી કે હું જ્ઞાનમયપણે છું એવું જે અજ્ઞાન હતું એને લઈને હું ઉદય વાળો છું એમ એમ જાણીને ઉદય ઉદયમાં તમને શુભાશુભ જે કાંઈ ઉદય આવ્યો એમાં શુભાશુભ પ્રણ કર્યો, નવો બંધ થતો રહ્યો, એનો પાછો ઉદય આવ્યો, નવો બંધ થતો રહ્યો. આ જે ચક્કર છે એમાંથી છૂટવા માટે બહુ વજનદાર વાદ્ય કરી છે આચાર્ય મહારાજે, કે જ્ઞાનમયપણે જોવાને લીધે કેટલી ગાથા વહી ગયેલી હતી. છે ને સમસ્યા. इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है. जिसको इच्छा नहीं है उसको परिग्रह भी नहीं है. इच्छा नहीं है मतलब के वास्तव में मैं ज्ञानमय होने से सिवाय ज्ञान मुझे किस चीज की आवश्यकता है. ज्ञान में तो किसी चीज की आवश्यकता होती नहीं, ज्ञान अलग भी रहता है, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है. मैं ज्ञान में ही रहता हूँ, कोई चीज की मुझे आवश्यकता है तो बात नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ. ये इसकी पद्धति है अवलंबन लेने की. पता है इच्छा तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमय भाव ज्ञानी के यहाँ से तलब के अज्ञानमय भाव ज्ञानी के
कपड़े चेंज करना जरूरी है.
अपना तो चेंज किया हुआ है
रात
को चेंज कर दिया ना, एक तो दो कर दो. ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव होता है, इसलिए ज्ञानी किसी को नहीं चाहता. ज्ञान में एक न एक भाव के सद्भाव के कारण केवल ज्ञानी केवल ज्ञायक ही है. ये यहां से बात चालू किया. इसमें फिर अलग अलग बात किया, पुण्य का पाप का ज्ञायक है, पुण्य का पाप का मंगल ज्ञायक. इसका मतलब क्या, शुभाशुभ का वो ज्ञायक हो गया कि ये शुभाशुभ भाव है मैं ज्ञान में, इसलिए मेरा वो ज्ञेय. मैं क्यों मेरा ज्ञेय है, क्योंकि मैं ज्ञान में हूँ, इसलिए मेरा ये ज्ञेय. ज्ञान मेरे में चल रहा है, ज्ञान से मैं तन्मय हूँ, ज्ञान से मैं अभेद हूँ, ज्ञानमय हूँ, बस इसलिए. और सब कुछ मेरा ज्ञेय है. इसका भोग लिया, भोजन का, पानी का, देखिए ये सब उदय भाव नॉर्मली हमेशा जो होते रहते हैं. पहले पुण्य लिया, फिर पाप लिया, फिर भोजन, फिर पानी, ऐसे बहुविध भाव जो भी है. ज्ञानी इसका ज्ञाता होने से उसको इसकी इच्छा नहीं है, भिन्नता होती है, इसलिए कहते हैं कि इच्छा नहीं है. जो अभिन्नता करता है उसी को ही परिग्रहण कहा है. जो भिन्नता करता है उसको परिग्रहण नहीं किया है, क्योंकि तो उससे अलग पड़ता है, भाव में भिन्न पड़ जाता है. तो उसे पूर्वबद्ध कर्म का उदय जो भी है, भोग भोग जितने भी है, ये संक्षेप ने सबको ले लिया. संप्राप्त उदय के भोग में जो योग बुद्धि ज्ञानी थे, उदय तीन प्रकार के, अतीत वर्तमान और भविष्य, तीनों प्रकार में भिन्नत्व है. क्यों? तो मैं ज्ञान में ही हूं. वर्तमान में तो भिन्न हुआ, बुद्ध भविष्य का हो गया, साथ ही साथ हो गया. तो मैं भिन्न हुआ हूं, ભૂતકાળમાં જે જમી થા બિના વિકલ્પી જે લાભ આવી
અધ્યયન દશામાં તો જૈસે સ્વરૂપ કા ચિંતન હૈ સ્વરૂપ કા નિશ્ચય કરના એસા વિકલ્પ મુજે સ્વરૂપ કા નિશ્ચય કરના હૈ મેં જાનના કે હું એસા જો વિકલ્પ યે ભી ફિર પૂરો ઉદય હો ગયા
હું તો જહાં તક સમ્યક પ્રકાર સે ભિન્ન નહીં હુઆ वहां तक तो समुदय भाव में जाता है, जाता है समुदय भाव में, विकल्प मात्र उदय भाव में जाता है, सवाल नहीं। लेकिन जहां से भिन्न होने का उसकी भावना हुई, वहां से ये उदय में जो एकत्व बुद्धि है उसकी तीव्रता में फर्क पड़ता है। उदय भाव जो वर्तमान जिस वर्तमान में चलता है उसमें एक स्वतंत्रता रही है हमेशा, तो उदय से अधिक भी ये अपराध करें और उदय से कम भी अपराध करें ये जरूरी नहीं कि जिस डिग्री का उदय है उतना ही डिग्री की डिग्री अपराध है, ये जरूरी नहीं। सभी जीव कोई ज्यादा कर लेता है कोई कम कर देता है और उसमें उसकी हमेशा स्वतंत्रता रही। क्यों ज्यादा करता है क्यों कम करता है इसका कोई कारण नहीं, अज्ञान दशा में संसार दशा में। लेकिन कुछ विवेक हुआ कुछ विचार हुआ तो मुझे संसार से छूटना है, मुझे मुक्त होना है, मेरा स्वरूप का मैं निश्चय करूँ, तो उस वक्त उदय भाव होते हुए भी अपराध उसका जो है वो उसमें फर्क हो गया। पहले फर्क तो हुआ है कभी कभी, लेकिन कोई जान बूझ के समझदारी से नहीं हुआ है, पर यहाँ कुछ हुआ है उसमें एक विवेक जागृत हुआ और उसमें फर्क हो गया है, उसका फर्क। तो उदय भाव का अनुसरण तो है लेकिन अपराध में फर्क है। अपराध तो दो तरह तो दो तरह से फर्क होता है, ज्यादा भी है कम भी है, लेकिन ये कम होता है उसमें एक ज्ञान का एक नया विवेक का एक अंकुर होता है, तो इसी कारण से उनका अपराध में थोड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे कह रहे हैं मतलब बंद नहीं होता है, जो है भाव में जब बंद नहीं होता मतलब उसके जो बंद होता है उसका मात्रा कमती हो जाता है, कहने का तात्पर्य ये
जाने को तो बंद
नहीं मैं अज्ञाता ही है,
लेकिन जो जीव भेद ज्ञान का प्रयत्न करता है अपना तो प्रकरण चल रहा था कि भेद ज्ञान किस विधि से करना है, प्रस्तुत प्रथम जो अपने चालू किया वो भेद ज्ञान की विधि संबंधित है, तो इसमें दृष्टांत ले लिया भेद ज्ञानी का। तो भेद ज्ञानी कैसे भेद ज्ञान करता है, इसकी विधि कौन सी उसमें अपनाई है जिसका हम अनुकरण करें, बात तो इतनी, इसलिए इसका दृष्टांत लिया। तो भेद ज्ञान के वैज्ञानिक को ये बात आ गया कि मैं ज्ञायक हूँ इसलिए ज्ञायक होने की वजह से ज्ञान मैं हूँ इसलिए तो ज्ञाता है, उदय का ज्ञाता है, तो ज्ञाता दृष्टापना उसको रहता है उसका नाम हो गया, और अल्प संख्या में अल्प मात्रा में उसको राग रागांश भी पैदा हो जाता है उसका उसको अल्प
मैंने ये निर्णय की पोजीशन के आगे वाले पोजीशन में भी यही अवस्था है,
इतनी स्पष्ट अवस्था नहीं है, लेकिन इसी जाति में आने का एक प्रयास होता है, इस विधि में प्रवेश करने का एक प्रयास होता है, जो इसके सदृश हो गए तभी उसी जाति में आएगा।
ठीक
है, उससे 100% प्रतिकूल हुए तो उसमें
वो बैठे हुए
ठीक है, कुछ अंश में उसको सदृशता उसमें होनी जरूरी है ठीक है,
सेम स्टाइल का प्रैक्टिस करना होगा।
हाँ सेम स्टाइल का प्रैक्टिस चालू करें जब तक उसमें आ सके
ठीक है।
तो इसको प्रारंभ करना है
इस प्रकार प्रारंभ करता है
कि मैं ज्ञानमय हूँ, कि ज्ञान चलता है इसी से बात स्पष्ट है, प्रवर्तमान ज्ञान से बात स्पष्ट है, परिस्थिति स्पष्ट है कि मैं ज्ञान है, ज्ञान प्रवर्तता है यही सबूत है मेरी ज्ञान मिलता है कि मैं ज्ञान है।
मैं जैसे कल बात चला कि ज्ञान मैं मात्र हूँ इसमें कल्पना नहीं करना है, अनुभव करके देखना है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ या नहीं।
अनुभव करके मैंने चलते ज्ञान क्रिया है उसको अवलोकन करके
सिद्ध करना है,
अवलोकन करके उसका अनुभव को देखते हुए हमको ये बात लेनी है तो सिर्फ ज्ञान का विकल्प कर ले कि मैं ज्ञान नहीं हूँ ऐसा क्या प्रदेश कि विकल्प में ज्ञान पर लक्ष्य रहा और ज्ञाता का विकल्प होना तो नहीं जाता, और अवलोकन में ज्ञान स्वलक्ष्य हुआ और मैं ज्ञान वाला हूँ मैं ज्ञान नहीं हूँ, ये फर्क हो गया,
ज्ञात में फर्क हो गया,
दिशांतर हो गया। ये पहला जो काम होता है वो दिशा बदलने का होता है, उस वक्त भेद ज्ञान हो नहीं जाता, लेकिन ये दिशा बदलना ये भी एक अपूर्व चीज है। धर्म के क्षेत्र में अनंत देर आया और अनंत प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए, कभी कभी दिशा नहीं बदली। यहाँ जो पॉइंट बात है वो है कि दिशा कैसे बदले, दिशा बदली उसकी दशा बदली, दिशा नहीं बदली उसकी दिशा कभी नहीं बदली, इनका विज्ञान उसे
दिशा बदलने का प्रयास भी नहीं किया था
कभी उसने, उस दिशा बदलने की उसका ध्यान
ही नहीं।
करीब करीब जी ने अनुकरण किया है, गहराई में इस गहराई में नहीं जाते हुए तो चलो ज्ञानी तपस्या करता है हम भी कर लेते हैं, ज्ञानी व्रत को धारण करता है
वो बाह्य क्रिया में ही रही है,
ज्ञानी शास्त्र पढ़ता है हम भी कर लेते हैं, जो जो क्रिया ज्ञानी करता है हम इसका ज्ञानी होने के लिए इसका अनुकरण करते हैं। तो वो उसमें उसको दिखा जो इंद्रिय ज्ञान में देखा
बाह्य
में सही बाह्य अनुकरण
अंतरंग का
तो इनके अंतर दशा को नहीं पहचान, कि कैसे अंतर्मुख हुआ कैसे स्वसन्मुख हुआ, पर स्वसन्मुख होने और अंतर्मुख होना उसमें कैसे दिशांतर होती है, सारी दिशा बदल जाती है, बहिर्मुखता छूटती है अंतर्मुखता आती है, इस विषय में क्या होता है कि चारित्र एक सूक्ष्म की प्रधानता वाला परिणाम होता है, शांति नहीं रहती थोड़ी शांति नहीं, जीव को ऐसा लगता है कि मैं कुछ सफलता नहीं, कुछ न कुछ इसका फल मिल रहा है। ज्ञान का सूक्ष्म होता है तो कई प्रकार का शास्त्र ज्ञान हो
जाता
है, वो भी उसको पता चलता है कि पहले तो ये समझ नहीं थी, अब मेरा नया ज्ञान है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, कसाई की मंदता की शांति थोड़ी सहज रूप से पैदा हो जाती है, कभी उसको लगता है कि कुछ
हुआ
कर्म पैदा होता है तो फल मिलता है। दोनों जगह के मिथ्या तो दर्शन तीव्र हुआ है, दर्शन मुंह के प्रति उसका ध्यान गया ही है, ज्ञान का शोषण कार्य प्रधान से बोल पा रही है, ज्ञान का सूक्ष्म और चारित्र का सूक्ष्म किस बात में, इस परिस्थिति में अनंत काल निकला है, कभी दिशांतर होने का कुछ होता ही नहीं। तो आज ही इसी जगह छोड़ दो, गुरुदेव ने जो अभूतपूर्व स्पष्टीकरण किया है, कितना अभूतपूर्व किया है, इतना स्पष्टीकरण 125 बिल में 64 तो संक्षेप करके उसका अधिग्रहण हुआ है, कितना स्पष्टीकरण हुआ है, दिशांतर होने का अध्ययन कितने दिन होता है। इस परीक्षा में आप किसी दिन कोई विद्वान हो, कोई भी मोक्ष हो, दिशांतर होने का प्रयत्न करता है, और दिशांतर कैसे होना इस विषय की गहराई में जाने का कुछ प्रयत्न करता है दिखा। तो पहले दिशांतर होता है, फिर दिशांतर होता है, दिशांतर कैसे होना ये जिज्ञासा का विषय भी कहाँ है। इस तरह की जिज्ञासा वाला कोई नहीं, दशांतर पहले होता है, दशांतर तो दशा बदलती है, मोटी बात है, इसलिए पूछ लेता है, जिज्ञासा वो करता है, तो मुझे सहानुभूति कैसे हो, मुझे संगीत दर्शन कैसे, तो ये तो मोटे मोटे रूप से ये बात बार आई। लेकिन इसके पहले दशांतर होना है वो कैसे है, इस चालू परिस्थिति में मेरी दिशा कैसे है, जब कोई बात को हासिल करना है, कोई चीज को हासिल करना है, तो उसके पीछे ऐसे लगे लगने वाला वो जी होना चाहिए, उसका मूल को तो पकड़े, आखिर में उसका बिगिनिंग किस तरह से होता है। माना, स्वीकार कर लिया कि ये संगीत दर्शन वाकई मुख्य मार्ग है, और उसे हमें मुख्य मार्ग में आरूढ़ होना चाहिए, लेकिन इसके पहले तो मिथ्या तो दशा है, वो मिथ्या तो और समय अपोजिट है, एकदम अपोजिट है, कैसे ये पलटनी हो, पलटना होना, इसमें क्या प्रोसेस है, ठीक है, इसका इस बात की जिज्ञासा तो होना चाहिए, को समय कैसे वो आएगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं आ जाता कि अच्छा समय दर्शन तो मोक्ष मार्ग है, वो तो लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए, वास्तविकता इसकी कैसे है, ये बात दिशांतर है, इसलिए गुरुदेव ने परमानुसार में ये दिशांतर होना ही अपूर्व है, ऐसा कर दिया ये दिशांतर होने में ज्ञान की साधन और मिथ्या दृष्टि के पास कुछ दशांतर होने के लिए कुछ साधन, एक ज्ञान ही साधन, कि ज्ञान का कार्य अवलोकन करना है, खुद को अवलोकन करें दशांतर होने का कार्य, पर को तो अवलोकन कर ही रहा है, तो दिशा में वो चलता है, कोई दिशा में उसने धर्म सभी धर्म के कहलाने वाले धर्म के साधन को जुटाया, लेकिन दिशा वो केवल, इसलिए ज्ञानी ने कहा कि ये कोई धर्म के साधन ही नहीं, सब साधन बंधन हुआ रहा न कोई उपाय। अगर कोई ज्ञानी किसी पात्र जी को अपनी सीक्रेट देता है तो ये तो दिशांतर ऐसे होगा, कि जो ज्ञान है ज्ञान से ही ज्ञान को दे, यही अवंद परिणाम है, यही भेद ज्ञान है, यही उदय से छूटने का यही एक कारण है, तो ज्ञान से ज्ञान, यहां से तुझे तेरा परिपूर्ण स्वरूप लक्ष्यगत हो जाएगा, और यहां से ही लक्ष्य होते ही इसके प्रति तेरा बल बढ़ते ही स्वयं संवेदन हो जाएगा, जो स्वयं संवेदन कुछ नहीं है, सिर्फ ही ज्ञान को ज्ञान का वेदन, इसी का नाम ही स्वसंवेदन है और कोई चीज ही नहीं, तो जोश व संवेदन ज्ञान का ज्ञान का ज्ञान को ज्ञान का वेदन यही स्व संवेदन है, तो उसका ही अवलोकन चालू करो, ये दिशांतर का प्रारंभ है। तीव्र पात्रता में यही विषय पर अगर जीव का ध्यान गया या कुछ उसका ज्ञान में ये बात समझ में आई अंतर में, अच्छा ज्ञान ज्ञान से अपने को ही अपने में देखना है, ज्ञान में ज्ञान को ही देखना है, ज्ञान में सिवा ज्ञान कुछ को नहीं, किसी को नहीं देखना है, बस उसको ये सीक्रेट मिल गई, वो रास्ते पर आ गया, उसको विधि आ गई, वो उस विधि में आगे बढ़ जाएगा, इसका समय ये मोटी मोटी जो बात है इस विषय में कितनी गाथा लिया है, बहुत गाथा ली है ऐसा भाव लिया है। ज्ञानी तो स्वयं भाव का ध्रुवत्व होने से एक नायक भाव स्वरूप, इसलिए किसी भी प्रकार का कांक्षमान पदार्थ, इच्छा का विषय पदार्थ मेरे से भिन्न होने से मेरी पहुंच दीजिए इस पदार्थ के मेरे स्पष्ट इसकी जो बात है उन्होंने इसका प्रारंभ कर दिया है। सप्तमय वाले जो कल थे सप्तमय वाले क्योंकि सम्यक दृष्टि एक न्यायिक भाव होने से ऐसा ऐसा लेते हैं, तो
229 क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक नायक भाव महिता के कारण है। क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक नायक भाव महिता के कारण कर्मबंध संबंधी शंका करने वाले मिथ्या अथवा आदि भाव के अभाव होने से ईश्वर के इसलिए शंका कर के कांक्षित गुण की व्याख्या। तो एक नायक भावमयिता के कारण मुझे कुछ कर्म का बंध होगा, किस किस प्रकार का होगा उसकी शंका, पहले ये कर्मबंधन की शंका उसको छोड़ती, गति का बंध, आयु का बंध, किसी भी प्रकार का सबसे जो निधत निकाचित है वो गति और आयु होता है और सब निधत निकाचित उसको तो भूख नहीं पड़ती। तो सम्यक दृष्टि को निधत निकाचित कभी नहीं कहते, राग होते हैं, अर्थ ध्यान होते हैं, निधत निकाचित नहीं होते, बुरी गति हल्की गति हो ही जाए ऐसा होता है। तो परमा के नुकसान में बहुत बार किया कि कभी सम्यक दृष्टि को अशुभ भाग होता है तो अवश्य कभी न कभी, लेकिन उनको आयु का बंध कभी अशुभ, आयु और गति का बंध कभी अशुभ भाव के कारण नहीं हो सकता। तो ये बात तो सर्वज्ञ ने कही कि ये करना ही उनका विषय रहा सर्वज्ञ का, लेकिन मति स्रोत वाला स्वयं सम्यक दृष्टि को इसकी निष्क्रियता परिणमन के कारण पड़ती है। निद्राधिकार में कुंकुंदाचार्य 229 गाथा में, अब 230 में यही बात देते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक नायक भाव महिता के कारण सभी कर्मों पर के प्रति समस्त क्योंकि एक नायक भाव में इसलिए दो भी उदय है कर्म के फल है। मैं इसकी आकांक्षा करूं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं तो ये फल जो है इससे अब कैसे पिनूं इसके प्रयत्न में खड़ा हूं। ये बाल लाइन ही अलग अलग हुई, सारे जगत के जीव कर्म फल की आकांक्षा में खड़ा है, भविष्य की चिंता क्या है, कर्म फल कैसा कर्म फल है, मेरा भविष्य कैसा होगा, शादी के प्रति जिसका ध्यान जाता है तो उसको क्यों निषेध करते हैं, अध्यात्म का क्या लेना देना है इस निषेध के साथ, कि यही इसका निषेध, यही इसका लेन-देन है, यही संबंध है इसका, कि वर्तमान कर्म फल से तुझे भिन्न होना है तो भविष्य का तो सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो भविष्य भविष्य तो तुम अपने भाव को लंबा ले बात कैसे हो सकता है, तुम्हें तो यही लाइन पकड़नी है कि जो वर्तमान में उदय आ रहा है वो भूतकाल के बने हुए कर्म फल है, देव कर्म के फल है, इससे ही मैं जब भिन्न होने का प्रयत्न करता हूँ तो भविष्य के लिए तो मेरा सवाल ही कहाँ पैदा हो, तो कहाँ तक मेरा भाव लंबा जाने। अभी मैं भिन्न हो रहा हूँ, भिन्न होने का प्रयत्न कर रहा हूँ, तो भविष्य में जो पूर्व बंधा हुआ पूर्व कर्म क्रम आएगा तो उससे मैं भिन्न ही होने वाला हूँ, इसकी चिंता का तो सवाल ही कहाँ पैदा, कितना डिफर होता है, डिफरेंट हो जाता है, उल्टा हो जाता है,
सीधा हो जाता है, हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं,
जो उल्टा इससे उल्टा इसका नाम ही सीधा है, उल्टे से उल्टा इसका नाम ही सीधा है। मैंने अभी तो कर्म फल के भोगने का दुख से तो छूटा, लेकिन आगामी होने वाले जो सभी दुख है अभी से छूटा। आगे तो दुख होने का सवाल ही नहीं, अभी से छूट गया। बात मतलब क्योंकि जीव को चिंता ज्यादा भविष्य की है, और इसलिए अगर उसको कुछ 5-25-50 लाख आ गया है तो भी वो चैन से क्यों भविष्य की चिंता। जैसे कोई डाकिनी का बलगाड़ हो गया हो शाकिनी का, यही बात इनकी चिंता की है। और हमने उसको इसकी कोई भी बात की चिंता में पड़ता ही रहता है। तो ये बहुत तीव्र वर्ष उन्मुख होने की जो पद्धति है इसका एक विशेष स्वरूप है। या तो दिशा ही जिसको बदलना है, उसको तो सवाल ही बिल्कुल लाइन ही बदलनी है। पहले तो निर्णय करें उस हिसाब से मैं ज्ञानमय, एक ज्ञानमय टंकु किर्ण ज्ञानमय स्वभाव वाला से वर्तमान उदय से भिन्न हूं, और वर्तमान उदय में मेरे परिणाम जितने भी जाते हैं वो बंद का कारण होने से मैं इस लाइन को उदय भाव को छोड़ने के लिए प्रयत्न मेरी भिन्नता को अंगीकार करते हुए, तो मेरी भिन्नता का मैंने अंगीकार कर लिया है। तो भिन्नता लेकिन अंगीकार नहीं किया था, तो उदय भाव से छुटा है। जो वर्तमान उदय से छूटता है उसको भविष्य का क्या चिंता, क्या चिंता ऐसे तो जीव को भय है, चिंता तो फालतू नहीं करता है, लेकिन बयान भी तो भूखे करता है। तो जब ये पता चल गया ये दिशांतर होने में सब किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के पूर्व कर्म के उदय की हालत में उदय के बीच में होते हुए भी भीतर से मेरा सुख मेरे अनुभव में आएगा। सीध समान मेरा पद जो है उस रूप में मेरे को अनुभव करूँगा, उस स्वरूप अब भविष्य के संजोगों पर भय किस बात का। जो भी होगा सो हुआ, मैं तो भिन्न हूँ, भिन्न ही रहूंगा। अभी भिन्न हो गया हूँ तो वहां भी भिन्न ही रहूंगा, तो ये रहूंगा तो मेरा सुख जैसे वो होता रहेगा। बाहर तो दूर कुछ होगा, सुख होगा मुझे क्या है, मुझे क्या है इससे, मुझे क्या है। जैसे गृहस्थ लोगों को ज्यादा परिवार के परिवार का भूसा आता है, तो हम पूछते हैं कि 50 साल पहले तो ये परिवार नहीं था, क्योंकि हमारा इस ये जन्म ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुआ। 50 साल पहले वाला जो परिवार है ये भी सामने आप भी इसकी चिंता करेंगे तो नहीं करेंगे, पता है तुम्हारा पत्नी है, तुम्हारा प्यारा पुत्र है, कहेंगे तो नहीं करेंगे। अरे मैं 50 साल पहले तो तू इतने छोटा था, इतना छोटा था, मैं छोड़ ही नहीं सकता था। कोई कहते थे कि चिंता मत करो तो छोड़ नहीं सकता था, अब कहते कि करो तो करता नहीं। कैसे कैसे करता, तो अब इनकी हालत इन लोगों की बिगड़ रही है प्रत्यक्ष तौर पर। पहले तो इसके पीछे मरने लायक काम करता था, मरने का अर्थ सांस करता था, हो जाए तो भले ही हो जाए, प्लानिंग भी नहीं करता है, बस यही हालत वर्तमान स्थिति की है। कुछ 50 साल आगे की, अभी 50 साल हो जाएगा तो इनके भी कहेंगे तो नहीं करेंगे।
आज एक लड़का जवान है, वो आज मर गया, उसका चित्र आगे का 5 साल के बाद का बच्चे का बताया जाए कि तुम्हारा बच्चा है, कौन स्वीकार करेगा?
कल्पना है, बस कल्पना जैसे जैसे करता है।
कल्पना तो नाटक है, ये तो गुरु ये संपत्ति का बंटवारा है। लड़का होता है, पत्नी भी जब कोर्ट को मुकदम अधिकार के आज छोटी मोटी के पुरुष कैसे करते हैं, आदमी को ये लगता है कि मैंने कितनी बड़ी मेरे दिमाग से ये सब संपत्ति आ गई और मुझे ही देने में ये लोग अधिकार का जो उपयोग कर रहे हैं, तो हमने ऐसी भूल क्यों किया, करना ही नहीं चाहिए, ऐसा लग जाता है।
ये तो अनुभूत चीज हर आदमी की जिंदगी में, अनुभूत चीज
कि ऐसा निकम्मा के लिए मैंने ये काम कर लिया, ऐसा निकम्मा के लिए मैंने ये काम कर लिया, अभी तक दुख होगा, अभी तक सांस किया, अभी तक हो गया। भिन्नता का विचार वस्तु के स्वरूप को अनुसरण करते तो एक महाभिवेक है, और फिर प्रसंग और उदय होने से करते तो ये विवेक नहीं है, ये राग वस्तु के स्वरूप अनुसार अगर भिन्नत्व कर लिया तो ये महाविवेक है, और फिर ये उदय हुआ कि ये निकम्मा है इसलिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, वो मेरे से जुदा है, बिल्कुल अलग रहता है, सब अलग काम करता है, सब इसकी अलग है, सब इनकी अलग है, फिर मेरे क्या लेना देना, चाहे भाई हो या पत्नी। ऐसा हुआ है कि कई भाइयों ने इसके ठंडी के साथ
बेटा बाप के साथ करते हैं,
बेटा बाप के साथ करना ये तो बहुत मामूली है, भाई भाई में कर रहा हूँ तो बहुत मामूली है, ऐसा भी चलता है कि भले ही मेरा धनी है साफ हो जाएगा लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, पहले वो उसके लिए मरा है और पीछे आपस में ये राग की जगह ली है द्वेष ने, तो आपस में ये तनाव एक पाई नहीं, पाई की कोई कीमत नहीं है लेकिन एक पाई नहीं पता है कि नहीं, ये रात की जगह लेता है। जब संसार में ये बात होती है और राग उड़ जाता है, महत्व खत्म हो जाता है, बिल्कुल महत्व रहता ही नहीं, मगर महत्व का स्थान तो द्वेष लेता है, कुछ वो अपनी चले तो उसका अहित भी कर डाले, उसको मारे, उसको लूटे, उसकी चोरी कर ले, जो मैं उसको कई प्रकार के ऐसे हल्के परिणाम मिलते हैं नीचे को ठीक है, तो ये राग की जगह द्वेष करता है, बजाय इसके वस्तु के स्वरूप को समझ कर वेदे की ऊपर नहीं कर ले, अनंत काल का मक्का तो काम हो जाए। जैसे अपन यहाँ आए तो 1000 माइल मिल कर दूर के 200 माइल, अब वहाँ क्या होगा, अरे जो होगा सो होगा, कर ले तेरा काम, परिवार को तो छोड़ के आए, किसी भी प्रवृत्ति और जिम्मेवारी का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, यहाँ का क्या होगा, अरे जो भी होगा सो होगा, ये भी इनके तेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, सभी के अपने पूर्व कर्म का उदय आता है, तेरा उसमें कुछ चलने वाला 1% भी नहीं है, अब तुझे विवेक बहुत होगा, मेहनत से सोच ले, दिशांतर कर रहे हैं, जब दिशांतर हो गया तो तू जगत का बादशाह हो गया, दिशांतर नहीं हुआ तो वैसा ही भाव मरण सभी समय का पूरे मरण भी अनंत आता है। ठीक ये निरपेक्षता आए बिना, इस प्रकार की निरपेक्षता आए बिना अपेक्षा बुद्धि में दिशा कैसे चेंज होगी, दिशा कैसे जब इसको दिशांतर करना है वो अपेक्षा बुद्धि में दिशा दिशांतर कैसे हो सकती है। जहाँ तक अपेक्षा बुद्धि है कि कुछ ना कुछ करना है वहां तक दिशांतर नहीं कर सकता। दिशांतर होगा ये अपेक्षा बुद्धि बदलेगी तब वहां तक नहीं हो सकता। जीव क्या कहता है, अपेक्षा बुद्धि को यूं कहीं और इधर रख लेते हैं और फिर जो भी प्रयत्न है वो करें कैसे, सवाल ही नहीं। ये 230 में भी कांक्ष मान के बात है, 231 की टीका भी सभी गाथाओं की टीका यहाँ से पढ़ा, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्किरण एक गुना एक भावमयता के कारण सभी वस्तु धर्मों के प्रति चिकित्सा भाव का अभाव, ये ठीक नहीं है। घृणा वाली बात उसको छोड़ो, मैं क्या था जब किसी का कांक्षमान पड़ा नहीं है, आकांक्षा नहीं है तो इसका ही एक पहलू है, आकांक्षा का ही एक दूसरा पहलू है, जुगुप्सा का है, राग का ही दूसरा पहलू द्वेष है, राग हटता है तो इसका स्थान द्वेष लेता है, ज्ञाता दृष्टा में राग है तो बत्तीस में यही पंक्ति है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्किरण एक गुना एक भावमयता के कारण आचार्य महाराज की टीका का प्रारंभ लगातार यही यूं कह जो रहा, मुंह का अभाव होने से देखो बताने में ज्ञान नहीं होता, ज्ञाता दृष्टा होना चीज जैसी है ऐसी दिखती है। जैसे एक पत्ता है उसमें हरापन भी है उसमें पीलापन भी है, देखते हैं सामने हरापन दिखता है पीला पीलापन देखते हैं, हरापन अच्छा और पीलापन अच्छा नहीं, पीलापन अच्छा और हरापन अच्छा नहीं, कहाँ से लाया था ये बनता है। चीज जैसी है उसे ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, जलती है, बात खत्म, जैसे के तैसे उस वैसे देख करके उससे आगे चला जाता है ये ठीक है। बाकी ने ये लिया है कि सर्वथी ज्ञानमय पड़े सर्वथी हूँ ज्ञानमय पड़े हुआ ने लीधे भिन्न छू ते सम्म भावे वेद हूँ, की बात इष्ट अनिष्ट नहीं करता, मात्र ज्ञाता इष्ट हुआ ठीक है, अनिष्ट हुआ ये ठीक नहीं है, ये कांक्षमाण और ये हुआ गुणा का परिणाम दोनों विषम भाव है, विषम भाव से विरुद्ध संभाव है, संभाव से विरुद्ध विषम भाव ने मूढ़ता लिया, ये भेद ज्ञान होने नहीं होती ऐसा कोई नहीं होता, तो अटैचमेंट होता है तभी विषमता होती है, अटैचमेंट अनादि सा है उसको डिस्कनेक्ट कर तभी तो संभाव है। टेम संभावे ज्ञान में ज्ञान वेदन है उसको वेदना, दूसरे पदार्थों को तो कोई वेद ही नहीं सकता क्योंकि तेरी भिन्नता है, सर्वथा भिन्नता है, द्रव्यक्षेत्र से कहां से तेरा प्रवेश ही नहीं है, न तेरे में उसका प्रवेश, प्रवेश हुए बिना तो वेदा ही नहीं जाता है, और ज्ञान ज्ञान में टंकोत्किरण है,
जी ज्ञान का ज्ञान वेद संकोच के में है, टांकने से उत्पन्न किया उसको नाश नहीं कर सकते, ज्ञान वेदन को नाश नहीं कर सकते। इसलिए हर जगह टंकोत किरण टंकोत किरण टंकोत किरण ऐसा होता है, क्षणे क्षणे प्रसंगे प्रसंगे आप प्रकार अभ्यास वाले इसका अभ्यास इस तरह से चालू करें, देशांतर हो जाएगी देशांतर। अगर इस अभ्यास इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया और सब कुछ तो अकर्तव्य को किया, कर्तव्य को नहीं किया। दृष्टि में मूढ़ता से इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न होता है, उसे उदय की बलवत्ता जानकर उन भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहता है। 234 क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत किरण एक ना एक भाव में टापिक लगातार नहीं। यदि अपना आत्मा मार्ग से च्युत हो तो स्थिर रहता है। अब बात लिया है अस्तिका, अभी पहले नास्तिका लिया था, अब लिया अस्तिका, कि मार्ग में जितनी भी चुकी होती है अस्थिरता होती है, सभी दृष्टि को अस्थिरता होती है, तो अस्थिरता को धारण करें। भिन्न तो हो गया, लेकिन भिन्न हो गया तो अब क्या कर रहे हैं, भिन्न तो हो ही गया, तो हो गया अब क्या करना है, अधिक स्थिर करना, अधिक जमाना है, इसलिए थोड़ी चुकी हो रही है, जो भी अल्प मात्रा में हो रहा है अस्थिरता के कारण अस्थिरता को समाप्त है। ये बात इसमें भी यही लाइन यही पद्धति, क्योंकि समय दृष्टि टंकोत किरण एक नायक के कारण स्थिरत्व को पकड़ता है, स्थिरत्व को उत्पन्न करता है। ये 234 में 235 में यही बात, क्योंकि समय दृष्टि टंकोत किरण एक नायक भावनीता के कारण सम्यक दर्शन यानी चारित्र को अपने से अभेद अभेद बुद्धि से सम्यकतया देख लेता है, देखता रहता है, अवलोकन करता रहता है, अनुभव करता है, इसलिए वो अपने मार्ग में परम प्रीतिवान है। अपना कार्य करने में वो परम प्रेम से अपना कार्य करता है, परम रुचि से करता है, इसी को अच्छा वात्सल्य अपने को अपने का वात्सल्य। वात्सल्य में क्या कहते हैं, पुष्टि होता है, तो स्थिति भी किया पुष्टि भी किया, पुष्टि करने से वृद्धि करते हैं, स्थिति किया और आगे बढ़ा, निर्जरा का अधिकार है। 236 में भी यही है, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत किरण एक नायक भाव, ज्ञान की समस्त शक्ति को प्रकट करते करने और विकसित करने और फैलाने में प्रसार करने में एक प्रभाविक ताकत वाला अपने को बनाता है। इसलिए निश्चय प्रभाव प्रभाव खुद ही है, निश्चय का प्रभाव खुद ही करता रहता है, इसकी दृष्टि का आठ निश्चय से होता है। सभी में एक ही बात आठ गाथा एक ही बात का उदाहरण किया।
वो संभाव्य वेद को एमा बदवा भी जाए चाहे आठ में
वेद से एक में सब वेद आठ वेद ज्ञान थी एटले स्व थी, स्व थी एटले के ज्ञान थी, ਰਾਵ ਨੂੰ ਬਿਨ ਭਲੋ ਥਵਾਵਾਂ। ਗਿਆਨ ਥੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਏਕਤਵ ਥੋਣ ਤੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਕਰਵੂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਥੀ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਥੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਭਿੰਨ ਪਣ ਉਥੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਛ। ਗਿਆਨ ਥੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਏਕਤਵ ਥੋਣ ਤੇ ਕਾਰਨ ਛ। ਗਿਆਨ ਥੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਏਕਤਵ ਥਤਾ ਰਾਗ ਥੀ ਭਿੰਨ ਤਵ
ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਬਾਤ
ਰਾਗ ਬੁਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮੇ ਭਿੰਨ ਹੂੰ इस पड़खे की मुख्यता नहीं, ऐसा होता है, आए बिना नहीं रहता नास्तिका विषय नास्तिक पैदा होते, लेकिन मुख्यता है ज्ञान से ज्ञान के एकत्रता है।
अवलोकन में भी तो आस्तिक पक्ष है, इसीलिए उसका मुख्यता
नास्तिक मुख्यता नहीं होती है, मुख्यता इसलिए ये बात लिया है।
मैं नास्तिक भी आस्तिक को दर्शाता है,
लेकिन ये स्व है तो ये पर है, और ये पर है तो ये स्व है। ज्ञानी स्वी राग बिल्कुल थवामा, ज्ञान थी ज्ञान एकत्व मुख्य है। ज्ञान में